खुदावंद के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह मेरे साथ निकालें फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे और दूसरी आयत पर हम गौर करेंगे, और आज हम सीखेंगे उन अहकामात के बारे में जो कलीसियाई हुक्म है जो ईमानदारों के लिए हैं। पहली 11 आयात इस हुक्म के साथ साथ कि एक दूसरे के साथ एक दिल, एक ही सोच, एक ही ख्याल होने के साथ साथ हमें यीशु मसीह की बहुत खूबसूरत जिंदगी की मिसाल पालूस रसूल देता है। इसलिए फिलिपियों 2 बाप उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली व दर्द मंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझो। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी सूरत में शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बा के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर खुदावंद की बरकत हो। पालूस रसूल यहाँ पर इन आयात में ईमानदारों को खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के उस एतहाद, उस एके, उस यक दिली, एक ख्याल, एक मकसद के बारे में, तसलीस के बारे में बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए हम ईमानदारों को बहुत से हुक्म मिले हैं कि हम एक दिल, एक जान, एक ख्याल हों। और क्यों बाइबल मुकद्दस में ये इतने अहकाम हमें दिए गए हैं, उसका मकसद क्या है? क्योंकि हम ईमानदार एक दिल, एक ख्याल, एक ईमान नहीं रखते। हम सबसे अगर पूछा जाए कि अंजील क्या है, तो हम सब, या अंजील में, बाइबल मुकद्दस में, अंजील में निजात का भेद क्या है, तो हम सब कोई ना कोई मुख्तलिफ जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मुख्तलिफ सोचें उस पर पाई जाती हैं। ऐसा ही कलीसिया में है। अगर हम पेंतिकॉस्टल फिरके को देख लें, तो उसमें निजात क्या है कि जब तुम पर रूह कुदस नाजल होगा, उसके बाद अगर तुम जुबाने बोलोगे, अगर तुम नबूवत करोगे, अगर तुम मोजजात करोगे, अगर तुम रूहानी बनोगे, तो तब यकीनी है कि तुम निजात याफ्ता हो। इसी तरह अगर रसूली कलीसिया में देखे जाए, उनका भी नजरिया यही है कि अगर तुम पानी का गोता लोगे, पानी से बपतिस्मा लोगे, तो तब निजात है। अगर हम मुक्ति फौज में देखें तो उनके भी नजरियात मिलते जुलते हैं। हाँ जी, हमें ईमान से निजात मिलती है, लेकिन उसके बाद हमें अपनी निजात को कायम रखने के लिए अच्छे ईमाल करने होंगे। अगर हम कैथोलिक कलीसिया में देख लें तो उसमें भी हमें ये सोच मिल रही है कि हाँ, हमें निजात ईमान से है, लेकिन उसकी पक्की हमें यकीन दहानी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम आलमे रवा में रह जाएं। और बहुत से, अगर हम कलीसियाओं को गिनना शुरू कर दें तो बहुत से नजरियात पाए जाते हैं। इसीलिए पालूस रसूल बार बार कहता है, मेरे साथ देखिए रोमियो, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 8 बाप, पहले 12 बाप देखेंगे। 12 बाप उसकी 16 आयत में पालूस रसूल यहां पर हुक्म देता है कलीसिया को, ना वो दीवारों से बातें कर रहा है, ना वो गैर कौम से बात कर रहा है, कलीसिया से, ईमानदारों से बात हो रही है। 16वीं आयत में रोमियो 12 बाप, आपस में यक दिल रहो। क्यों पालूस रसूल कहता है? क्योंकि ऊंचे ऊंचे ख्याल बांधते हैं, अपने आप को आला दर्जा देते हैं और अपनी अकल और समझ से बहुत दफा कुछ करना चाहते हैं। So, आपस में यक दिल हो, यानी कि एक सोच, एक ख्याल, एक जैसा हमारा सोचना हो ईमान की बातों पर। फिर मेरे साथ देखें इसी बाप में 15 बाप उसकी 4-5 आयत, और खुदा सबर और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे के मसीह यसू के मुताबिक आपस में यक दिल रहो। खुदा हम सबको सबर, हिकमत और दनाई दे के मसीह यीशु के मुताबिक, ना के मिशनों के मुताबिक। यहां पर कहा गया है कि मिशनों के मुताबिक नहीं, हम इंसानों ने आज गैर कौमें, दुख के साथ कहता हूं, आज गैर कौमें क्यों मसीहत को कबूल नहीं करती? इसलिए कि मसीहत में बहुत ज्यादा कसूरियां हैं। ऐसा ही है जी, मसीहत का अपना मुंह, सिर, हाथ, कान, उसकी समझ नहीं आ रही। कुछ कह रहा है गोते के साथ, कुछ कह रहा है कि छोटे बच्चे के बपतिस्मे के साथ, कुछ कह रहा है कि झंडे के नीचे से उतरो, कुछ कह रहा है कि 10 हुक्मों को मानो, कुछ कह रहा है कि गैर जुबाने बोलो, कुछ कह रहे हैं कि हाँ, जब कोई तुम मर जाओगे तुम्हारे पीछे कुर्बानियां गुजारेगा तो तब निजात मिलेगी। तो किसका यकीन किया जाए, बाइबल मुकद्दस का या फिर लोगों के और मिशनों के मुताबिक? तो तभी गैर कौमें भागती हैं, क्योंकि उनके अपने मजमों में बहुत सा फसाद है, उनके अपने मजमों में भी यही अबतरी की बातें पाई जाती हैं। अबतरी से मुराद गुमराही, बरगश्तगी की बातें जिसकी समझ नहीं आती। बाइबल मुकद्दस बेशक दोधारी तलवार है, लेकिन निजात के बारे में बिल्कुल वाजिया है, ना ही पानी के गोते से, ना ही शुक्रगुजारियों और हदियों से, ना ही 10 हुक्मों से, ना ही किसी झंडे के नीचे से गुजरने से के झंडे के नीचे से गुजरेंगे और निजात मिलेगी, और ना ही किसी और हुक्म पर, सिर्फ एक बात पर, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मुकम्मल किया। कि निजात क्या है? हमारे बाहर चर्च के सामने क्या आयत लगी है? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी, और हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। या फिर हम निजात को ईमान से ले लें, या फिर निजात को ईमाल से ले लें, और अगर ईमाल से करेंगे तो सब दोजक में जाएंगे। ये बाइबल मुकद्दस की बात है। पालूस कहता है कोई ईमान से रास्तबाज नहीं ठहर सकता, खुद भी पालूस ईमान से रास्तबाज नहीं ठहरा। वो अपनी रास्तबाजी के तमाम नेक कामों को कहता है कूड़ा, किरकिट, इंसानी गंध, जिसे हम मजबला और बहुत दफा जिसे हम कहते हैं हमारा गंध, वो अपने कामों को गंध समझता है। यशाया नबी इस बात को कहता है कि हमारी रासबाजी गंदे लिबास की मानद है। पहले कभी किसी ने बताया नहीं कि ये गंदा लिबास कौन है, लेकिन आज मैं भी इस पर गौर नहीं करूंगा, लेकिन भाइयों से किसी वक्त अगर कोई सवाल करेगा तो बताऊंगा कि ये गंदा लिबास कौन सा है। So, मसीह यसू के मुताबिक आपस में यक दिल, एक ख्याल, एक सोच, एक ही हमारा क्या हो, मकसद हो। लेकिन आज अफसोस के साथ हम मसीह यसू के मुताबिक नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं, अपनी अपनी सोच के मुताबिक मसीह को अपना रूप और रंग दिए हुए हैं। इसलिए पालूस रसूल कहता है फिलिपियों 2 बाप उसकी 2 आयत में, आपस में, मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। यक दिल, एक सोच, एक ख्याल, एक ईमान और एक ही पैगाम। अगर हमारा ये पैगाम एक नहीं है तो फिर हम एक सोच नहीं है। अगर मैं कहूं कि निजात यसु मसीह पर ईमान लाने से है, ब्रजेश और बाबूजी और विशाल और आप सहें कि जी नहीं जी, ब्रजेश कहे जी के पानी का गोता लेंगे तब है, विशाल कहे कि जी नहीं 10 हुक्मों पर अमल करेंगे तब हैं, एक पासवान मिला उसने कहा कि अगर जी हाँ जी हम दा यकी देंगे फिर है, तो फिर हम पालूस रसूल के बकौल यसु मसीह के उस निजात के काम को जो उसने मुकम्मल किया है क्या करते हैं, अलानिया जलील करते हैं, अलानिया जलील करते हैं। इसलिए पालूस कहता है हमें एक दिल, यकसा मोहब्बत, एक जान, एक ही ख्याल होने की जरूरत है। तफरके और बेजा फकर के बायस कुछ ना करो। आज मसीहत में तफरके हैं, बाकी बातें छोड़ दें। कोई कहता है जी दुआए रबानी पढ़नी चाहिए, कोई कहता है पढ़नी ना चाहिए, छोड़ दें इस बात को। कोई कहता है जी कि हमें एतवार की इबादत नहीं करनी चाहिए, हफ्ते की इबादत करनी चाहिए। कोई कहता है कि यसु मसीह को छोड़कर हमें मंगल की इबादत मुकद्दस एंथनी से मांगना चाहिए। कौन है मुकद्दस एंथनी? क्या वो यसु मसीह से बड़ा है? क्या वो पालूस से बड़ा है? सवाय यसु मसीह के कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हमारी निजात, दुआ या हमारा छुटकारा हो। रूहुल कुद्दस अगर सब कुछ लिखवा सकता है तो वो कह सकता था कि टियर पॉल के नाम से दुआ की जाए, वो कह सकता था बाइबल मुकद्दस के मुकद्दस एंथनी के नाम से दुआ की जाए, वो कह सकता था कि हाँ पूरे नए अहदनामा में कि हाँ पत्रस के नाम से दुआ की जाए। इसलिए हम आज बड़े अफसोस के साथ इन बातों पर, अगर हम एक ख्याल नहीं सिर्फ और सिर्फ सादा बातों पर निजात के पैगाम में, तो फिर कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाएगा? पत्रस का पैगाम, पालूस का पैगाम, लूका का तमाम पैगाम, यूहन्ना का पैगाम, यकूब का पैगाम, यहूदा का पैगाम, तमोथियस का पैगाम, तीतस का पैगाम, सबका यही पैगाम था कि यसु मसीह तुम्हारे गुनाहों के लिए मुआ और जो कोई उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। कहीं पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि टियर पॉल के मुकद्दस एंथनी या फिर कोई और। इसलिए अगर हम इब्तदाई कलीसिया बनना चाहते हैं तो फिर हमें इब्तदाई कलीसिया के उस बुनियाद पर गौर करनी होगी, वरना हम सब अगर आदमियों, अगर कलीसियाओं, अदर चर्चेस के मुताबिक, उनके असूलों के मुताबिक और उनकी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम सब दोजख में जाएंगे। तो सवाल अब आप पर और मुझ पर है कि क्या यीशु पर ईमान लाने से हम दोजख में जाएंगे या फिर हमेशा की जिंदगी जिसे जन्नत अलफरदोस भी कहा जाता है, कहां पर जाएंगे हम? इसलिए पालूस कहता है कुछ भी बेजा फखर या फिरकों के बायस ना करो। इसलिए उन्हें खूबसूरत हम सबको ये मिसाल देता है 5वीं आयत में, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह खुदावन का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और आदम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है, जो अबदी नमूना है। मेरा नमूना मत ले, मैं गुनाहगार हूं, मैं कहीं ना कहीं पर गुनाह करूंगा। बातों बातों में, सोचो सोचो में, ख्यालों ख्यालों में, ये आप इस बात से हैरान होंगे कि पादरी साहब भी गुनाह कर सकते हैं। जी, यीशु मसीह के अलावा कोई और हस्ती नहीं है जिसने कहा हो कि मुझ में कौन गुनाह साबित करे। इसलिए हमें एक ख्याल होने की जरूरत है, एक ख्याल होने की जरूरत है। जैसे ये बुनियादी तालीम है, किन बातों में हम एक ख्याल हों? इफिसियों 4 बाब उसकी 2 आयत से, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्बुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। हमें मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। जब कोई आपको सताए जाता है तो बर्दाश्त करें कि खुदा खुदा उसे समझा। इसी तरह कोशिश में रहो के रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। हमें रूह के मुतहद जिंदगी गुजारनी है, ना कि इंसानी जाब्तों के। अगर आप और मैं इंसानी, अगर आप मेरी सोच के मुताबिक या मेरे मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे तो मैं आपको मौत की तरफ लेकर जाऊंगा। क्योंकि इंसान की किताब में लिखा है कि इंसान की नजर में उसकी राहें दुरुस्त हैं, लेकिन उसके आखिर में क्या है? मौत है। जो राह इंसान को सीधी मालूम होती है उसकी इंतहा में क्या है? मौत है। हमें एक दिल होने की जरूरत है, हम एक ही बदन है। चौथी आयत में लिखा है, एक ही बदन है, एक ही रूह है, चुनाचे तुम जो बुलाए गए से उससे अमीर भी एक ही है। एक बदन से मुराद एक कलीसिया, मसीह का बदन। बेशक वो मुख्तलिफ नामों में बढ़ चुकी है ना जी, मुख्तलिफ नामों में बढ़ चुके हैं नाम, लेकिन हम हैं किसके? यीशु मसीह के। लेकिन आज हम मसीह के कहलाने की बजाय क्या कहते हैं? मैं फलाम मिशन का हूं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो गुमराही की बात है, मिशन को समझ ही नहीं पाए कि मिशन क्या है। मिशन का मतलब के मकसद इस ग्रोह का, इस ग्रुप का, जैसे ग्रेस बाइबल चर्च के जो मिशन का मकसद जो स्टेटमेंट है, बयान है, मकसदी बयान है, उसमें क्या है कि हमने अपने आप को इस बात के लिए वक्फ किया है कि खुदा के कलाम को हर तक लेकर जाएं। ये ग्रेस बाइबल चर्च खुदा के इस खिदमत का मकसद है। हमने खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दी है, अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा। ये मकसद है कि खुदा का कलाम दुनिया के हर एक कोने में, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, लेकर जाएं। इसीलिए घोटकी में, इसीलिए हरीम यार खां, इसीलिए थाना रहीम यार खां, और फिर 7 का बाद बहावलपुर, टैक्सला, घोटकी और शिकारपुर, और जहां तक बाइबल मुकद्दस पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये क्या है? चर्च का मकसद है कि खुदा के कलाम को दुनिया की हदों तक लेके जाना। कुछ चर्चेज का मकसद है सिर्फ जी पानी के पंप लगा के देना, कुछ चर्चेज का मकसद है सिर्फ जी बीमारों के लिए काम करना, कुछ चर्चेज का मकसद है सिर्फ और सिर्फ जी किसी की शादी ब्याह करवा देना, कुछ चर्चेज का मकसद है जी किसी को कर्जा देना। कुछ पादरियों ने ये सिलसिला बना लिया है कि वो कर्जा देते हैं 1000 के पीछे 100 अगर ना दो तो अपना टीवी रख जो, अपने या झुमके रख जो, अपना जो कुछ है वो रख जो। उसकी लिस्ट DSP के साथ पहुंची हुई है। शुक्र करो कि किसी ने बताया नहीं कि ये पादरी है, क्योंकि फिर मसीहत के ऊपर लानत करने के लिए कह सकते थे। और उन्होंने लिखा हुआ है, DSP ने जो नवा बंदा आया है अहदेदार, उसने नीचे लिखा, जब उसने सारे लोगों की जो सूदखोर हैं लिस्ट दी और उसने आकर पे लिखा, क्या खुदा का कलाम आपको इजाजत देता है? बाइबल मुकदस के मुताबिक भी सूदखोर दुरुस्त नहीं। हम एक तबीयत नहीं है, हम एक ख्याल नहीं है, एक ईमान नहीं है। एक ईमान से मुराद एक ही रूह है, एक ही बुलावा है, एक ही ईमान है। ईमान एक ही है, यीशु मसीह के सिवा निजात नहीं। अगर आपका कोई और ख्याल है तो फिर उस ख्याल के मुताबिक हम गलती पर हैं। सूदखोरों की लिस्ट में शुक्र करें कि पासबान जो नए नए पासबान बने हैं उनके नाम नहीं दर्ज किए गए कि पासबान फलां फलां कर्जा देता है और लोगों का खून चूसता है, पासबान फलां फलां, एल्डर फलां फलां और फिर डीकन फलां फलां। कौन मसीहत पर यकीन करेगा अगर मसीहत के अपने ही लोग फरीसियों की तरह डाकू बन गए हैं? हमने मसीह जैसा रवैया नहीं इख्तियार किया, हमने फरीसियों जैसा रवैया इख्तियार किया। हो सकता है आपने नहीं, लेकिन आपको बताना ये बेहतर है ताकि हम जाने कि क्या हो रहा है। इसलिए हमें एक ही ईमान है, एक ही अमीर है, एक ही खुदावन है, एक ही खुदा बाप और एक ही रूह है और एक ही हम सब का इकट्ठा करने वाला खुदावन्द यीशु मसीह है। इसलिए हमें एक ख्याल होने की जरूरत है। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि खुदावन्द यीशु मसीह पर नजर करो, उसका मिजाज कैसा है। वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को खुदा के बराबर नहीं बनाया। हम पासबान बन जाते हैं तो हम अपने आप को भूलकर या कलीसिया के रुकन बन के बहुत दफा बहुत सी ऐसी भयानक हरकतें करते हैं जो नागवारा है, खुदा के सामने, कलीसिया के सामने, गैर कौमों के सामने, फरिश्तों के सामने। क्योंकि यहां पर हमें तीन मखलूक का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह ने जब मुकम्मल ताबेदारी की तो उसको सरबुलंद किया गया किन के सामने? 10वीं आयत, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खास आसमानियों का यानी कि वो तमाम फरिश्तेगण जो आसमान के हैं, खास जमीनियों का जो हम सब जमीन पर रहने वाले हैं, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, हर एक वो तमाम मुर्दे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, एक दिन आएंगे वो उसके आगे उसका इकरार कहेंगे करेंगे कि हाँ खुदावन तू वाकई ही खुदा है, लेकिन उस तक बहुत देर हो जाएगी। आसमान के, जमीन के और जमीन के नीचे वाले वाले सब खुदा बाप के जलाल के बायस यीशु मसीह का इकरार करेंगे कि वही मसीह खुदावंद है। तो हम सबकी जिंदगी खुदा बाप, खुदा के फरिश्तों, नाफरमान फरिश्तों, दुनिया के सामने जिसमें ईमानदार और गैर ईमानदार हैं, नमूना होना चाहिए। हम सबको इब्तदाई कलीसिया से सीखने की जरूरत है कि एक ख्याल हो। दो दो करके यीशु मसीह ने भेजा तो उनका एक ही ख्याल था कि जाओ जाकर उनको मसीह के बारे में बताओ। लेकिन हम आज ऐसे शोशोपन में पड़े हुए हैं कि कलीसिया बिखरी हुई है। अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, पादरी फैसल पर हर रोज उंगली उठाई जाती है। आप भी अगर ईमानदारी से इसी तरह चलते रहें हर सुबह, तो हो सकता है आपको कुछ लोग कहेंगे ये क्यों सुबह को बात कर जाते हैं। आप इबलीस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर आप पूरी ताबेदारी से खुदा का कलाम सुनते हैं तो इबलीस के लिए बहुत बड़ा क्या है, बुराई की खबर है। वो नहीं चाहता कि सुबह सवेरे उठकर आप खुदा के कलाम को सुने। और एक सोच कब होगी? जब खुदा का कलाम बयान किया जाएगा। इसी करके कलीसिया एक सोच नहीं, एक ख्याल नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लेकिन मैं आपके लिए कह सकता हूं कि आप एक ख्याल होंगे जैसे जैसे मसीह में बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज इस बात पर हम सब मुत्तफिक हैं कि निजात खुदावन्द यीशु पर ईमान से। क्या आप सब इस बात पर मुत्तफिक हैं या फिर आप डिनोमिनेशन या फिरकों के मुताबिक कि नहीं जी गोते मारने की, जुबानें बोलने की, या हदिये देने की, या फिर कोई और हुक्म को मानने से निजात है। अगर आप इस बात पर मुत्तफिक हैं तो मेरी ये दुआ है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि निजात सिवाय यीशु मसीह के किसी और पर ईमान लाने से नहीं। तो आए हम खुदा के हुजूर झुकें और खुदा के हुजूर